नमस्कार, आज हम एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का एक खास उद्बोधन है, नया समय, नया काम और नई जिम्मेदारियां।
हाँ,
इसमें उन्होंने एक बड़े ही असाधारण समय का जिक्र किया, जिसे उन्होंने युग संधि कहा। तो चलिए समझते हैं कि ये क्या था और क्यों इतना महत्वपूर्ण माना गया इसे।
बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव के हिसाब से देखिए, ये कोई ऐसा वैसा साधारण समय नहीं था। उन्होंने इसे दुनिया की कायापलट का दौर माना, एक विशेष समय जो सन 2000 तक चलेगा, और कहा कि इसमें दो प्रक्रिया है, मतलब दो चीजें एक साथ होंगी।
अच्छा, क्या चीजें?
एक तो पुरानी जो अब काम की नहीं रही वो व्यवस्थाएं, उनका विनाश, और साथ ही एक नए बेहतर युग का नवनिर्माण।
विनाश और नवनिर्माण साथ साथ।
और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं था, ये अंदर की तैयारी, हमारी अपनी आत्मिक तैयारी का भी आह्वान था। उन्होंने ये भी कहा था कि शरीर रहे ना रहे, वो अपने सूक्ष्म रूप से, मतलब अपनी आध्यात्मिक शक्ति से सन 2000 तक इस बदलाव में सक्रिय रहेंगे।
विनाश, ये शब्द थोड़ा सा मतलब चिंता जगाता है। किस तरह के विनाश की बात कर रहे थे गुरुदेव?
देखिए, कई स्तरों पर उन्होंने कई चेतावनियां दी। पहला तो था प्रकृति का प्रकोप।
प्रकृति का? जैसे?
हाँ, जैसे ऐसी बाढ़, ऐसे तूफान, भूकंप जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की थी किसी ने, नई नई बीमारियां जिनके नाम तक डॉक्टरों ने नहीं सुने थे, मौसम का पूरा मिजाज बदल जाना, ऐसा लगे जैसे प्रकृति वो रुष्ट हो गई है। और इसके साथ ही समाज में भी गिरावट, चोरियां, डकैतियां गांव गांव तक बंदूकें पहुंच गई थी, जरा सी बात पर हत्या कर देना।
हाँ, ये तो सुनने में आता था।
सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाएं, स्त्रियों को जला देना, ये सब उस समय की कड़वी सच्चाइयां थी, मतलब मानवीय मूल्य जैसे गिरते जा रहे थे।
प्रकृति, समाज और पर्यावरण, उसके बारे में भी कुछ कहा था गुरुदेव ने? आजकल तो ये बहुत बड़ी चिंता है।
बिल्कुल कहा था, उस समय भी ये चिंता थी। हवा में जहर घुलने की बात कही उन्होंने, जो सांस के साथ शरीर में जा रहा है।
ओह,
गंगा जल जिसे कभी अमृत माना जाता था, वो फैक्ट्रियों के प्रदूषण से, कीटनाशकों से पीने लायक नहीं रहा।
ये तो बहुत दुख की बात है।
और एक बहुत गंभीर बात कही थी, परमाणु हथियारों के विकिरण का खतरा, रेडिएशन का, जिससे आने वाली पीढ़ियां वो गूंगी, बहरी, विकलांग या मानसिक रूप से अविकसित पैदा हो सकती हैं।
हे भगवान।
फिर धरती से जो हम खनिज निकाल रहे हैं, तेल, कोयला, लोहा बेहिसाब, उससे जमीन का खोखला होना, खेती की पैदावार घटना, जनसंख्या का बढ़ता बोझ, और भविष्य में एक महायुद्ध का खतरा भी बताया। ऐसा युद्ध जिसमें एटम बमों से शायद पूरी पृथ्वी ही तबाह हो जाए, जैसे शायद वो कहते थे बृहस्पति और मंगल के बीच कोई ग्रह था, उसके साथ हुआ होगा।
ये सुनकर तो वाकई चिंता होती है। परमाणु विकिरण, महायुद्ध, अगर हालत इतनी गंभीर थी तो क्या गुरुदेव ने कोई उम्मीद भी दी, कोई रास्ता दिखाया?
हाँ, बिल्कुल, और यही इस उद्बोधन का सबसे जरूरी हिस्सा है। पूज्य गुरुदेव सिर्फ समस्याएं नहीं बताते।
अच्छा।
वो समाधान और हमारी नई जिम्मेदारियों की तरफ भी ध्यान खींचते हैं। वो याद दिलाते हैं भागीरथ की।
भागीरथ?
जिन्होंने गंगा को,
हाँ, जिन्होंने अपने तप से गंगा को धरती पर उतारा।
और महर्षि दधीची की, जिन्होंने अपनी हड्डियां तक दान दे दी वित्रासुर जैसे राक्षस को मारने के लिए।
यानी तप और त्याग।
बिल्कुल, मतलब साफ है ये जो बड़ी चुनौतियां हैं, इनका सामना सिर्फ बाहरी चीजों से, पैसे से या ताकत से नहीं हो सकता, इसके लिए तपस्या चाहिए, आत्मिक बल चाहिए।
आत्मिक बल?
हाँ, और इसी सिलसिले में वो अपने अनुयायियों की, जिन्हें वो प्यार से बच्चे कहते थे,
हाँ,
गायत्री परिवार के सदस्य, उनकी सुरक्षा और उन्नयन का संकल्प भी लेते हैं।
उन्नयन, इसका क्या मतलब था? सिर्फ मुसीबतों से बचाना या कुछ और गहरा? क्योंकि कुछ लोग सोच सकते हैं कि महामानव या देवता जैसा बनाना, ये तो बहुत ऊंची बात है, ये प्रैक्टिकल कैसे है?
बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, उन्नयन का मतलब सिर्फ सुरक्षा नहीं था, इसका मतलब था इंसान को उसकी मौजूदा हालत से बहुत ऊंचा उठाना।
ऊंचा उठाना कैसे?
सामान्य मनुष्य को महामानव बनाना, ऋषि या देवता के स्तर तक ले जाना, मतलब उनमें शिवाजी जैसा साहस भरना, महाराणा प्रताप जैसा स्वाभिमान जगाना, सुदामा जैसी निस्वार्थता, हरिश्चंद्र जैसी सच्चाई।
अच्छा, गुणों पर जोर था।
हाँ, जोर भौतिक संपन्नता पर उतना नहीं था जितना विचारों और भावनाओं की ऊंचाई पर था। लक्ष्य सिर्फ पेट भरने वाला या पैसा जोड़ने वाला इंसान बनाना नहीं था,
बल्कि
समाज को रास्ता दिखाने वाला, चरित्रवान, प्रभावशाली इंसान गढ़ना था। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो अपने लोगों को भूखा, नंगा या बेइज्जत नहीं रहने देंगे, लेकिन असली तरक्की अंदर की होगी,
आंतरिक तरक्की।
हाँ, और ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं था, यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी योजना का हिस्सा था।
व्यक्तिगत से विश्व तक, हाँ। ये कैसे जुड़ा? दुनिया के लिए क्या योजना थी?
उनकी दृष्टि थी एक एकीकृत दुनिया की, एक राष्ट्र, एक धर्म, मतलब मानव धर्म, एक ऐसी मानवीय व्यवस्था जहाँ कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो, सब प्यार से मिल बांट कर रहे।
ये तो बहुत बड़ा आदर्श है।
हाँ, लेकिन ये लक्ष्य पाने से पहले दुनिया में जो अनीति है, अत्याचार है, शोषण है, इन नकारात्मक ताकतों से संघर्ष करना जरूरी था।
संघर्ष?
हाँ, यानी पहले तोड़ना, जो गलत है उसे हटाना, और फिर एक न्याय वाली, प्रेम वाली दुनिया बनाना। उन्होंने साफ कहा कि इसमें संघर्ष होगा, बिल्कुल संघर्ष होगा, क्योंकि गलत ताकतें आसानी से नहीं हटेंगी, पर वो सूक्ष्म रूप से सन 2000 तक इस काम में लगे रहेंगे। अंतिम लक्ष्य था एक बराबरी वाला सुंदर संसार बनाना।
तो इस पूरी बातचीत से जो बात साफ हो रही है वो ये है कि पूज्य गुरुदेव के हिसाब से ये जो मुश्किलों भरा युग संधि का समय था,
हाँ।
वो असल में व्यक्तिगत और वैश्विक दोनों स्तरों पर एक बड़े बदलाव और आध्यात्मिक विकास का एक जबरदस्त मौका भी था।
बिल्कुल सही कहा, ये एक तरह का आह्वान था कि हम आज की मुश्किलों को स्वीकार करें, अपनी अंदरूनी शक्ति जगाएं और मिलकर एक बेहतर भविष्य बनाएं। एक ऐसा भविष्य जहां इंसान सिर्फ जिए नहीं बल्कि अपने अंदर के देवत्व को जगाकर उठे। ये विनाश के साथ साथ नवनिर्माण का समय था जिसमें हर किसी के लिए एक भूमिका थी।
पूज्य गुरुदेव ने शिवाजी, सुदामा, विश्वामित्र जैसे आदर्शों का जिक्र किया। ये सोचने वाली बात है कि उन महान ऐतिहासिक और पौराणिक चरित्रों के कौन से गुण आज की इस उलझी हुई दुनिया की चुनौतियों का सामना करने में हमारे लिए सबसे ज्यादा काम आ सकते हैं।